ये आकाशवाणी श्रीनगर है। शिबीर उस जमां से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। भारत में साल रफ्ता के दौरान दिफाई साजो सामान की कद्र में अब तक का सबसे ज्यादा इजाफा दर्ज। मुल्क को दिफाई साजो सामान तैयार करने के आलमी मरकज के तौर पर फरोग देने के लिए हुकूमत पुरअज़्म। जम्मू कश्मीर में बिजली के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ रूपये की सरमायाकारी। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अगले 3 बरस में 36,400 सोलर रूफ टॉप नसब करने का निशाना। मुल्की सतह पर तालीमी साल 2024-25 के दौरान तीसरी और छठी जमात के लिए नई और दिलकश दर्सी किताबें मुतारिफ कराने का तालीम की मरकजी वजारत का ऐलान। और बरतानिया के आम चुनाव में लेबर पार्टी की शानदार फतह, मौजूदा वजीर आजम ऋषि सोनक ओहदे से मुस्ताफी। अब पेश है खबरों की तफसील। भारत में साल 2023-24 के दौरान दिफाई साजो सामान की कदर में अब तक का सबसे ज्यादा इजाफा दर्ज हुआ है। यह कदर 2023-24 में तकरीबन 1,26,887 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जो पिछले माली साल के दौरान तैयार किए गए साज सामान की कदर से 16.8% ज्यादा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस बारे में बताया कि वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की कयादत में मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हर साल नए संग मील तय हो रहे हैं। वजारत दिफा ने कहा है कि 2023-24 में तैयार किए गए साजो सामान की मजमू कदर में तकरीबन 79.2% हिस्सा दिफाई साजो सामान तैयार करने वाली सरकारी शोबे की कंपनियों और दीगर सरकारी कंपनियों, जबकि 20.8% हिस्सा प्राइवेट शोबे का है। सिंह ने दिफाई साजो सामान तैयार करने वाली सरकारी कंपनियों, दीगर सरकारी कंपनियों और प्राइवेट शोबे की कंपनियों को मुबारकबाद दी कि उन्होंने दिफाई साजो सामान की तैयारी में अब तक का सबसे ज्यादा इजाफा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत भारत को आलमी सतह के दिफाई साजो सामान तैयार करने वाले एक सरकर्दा मरकज के तौर पर फरोग देने के लिए मजीद साजगार निजाम तैयार करने की पाबंद है। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने घरेलू सार्फीन पर जोर दिया है कि वह मुफ्त शमसी तवानाई के फवायद हासिल करने के लिए मरकज के फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर रूफटॉप प्लांट्स की तंसीब के लिए फौरी तौर पर दरख्वास्त देकर अपना इंद्राज कराएं। एक प्रेस रिलीज में महकमे के तर्जुमान ने कहा कि इस स्कीम के तहत अगले 3 बरस में 36,400 सोलर रूफ टॉप्स नसब किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सार्फीन की एक खासी तादाद ने पहले ही कौमी पोर्टल पर इंद्राज कराया है। उन्होंने सार्फीन से कहा कि वह अपनी दरख्वास्तें www.pmsuryghar.gov.in पर जमा करें। तर्जुमान ने मजीद कहा कि कश्मीर डिस्कॉम तमाम इलेक्ट्रिक डिवीजनों में आगाही कैंप और आईईसी मुहिमों का इनेकाद कर रहा है ताकि इस फ्लैगशिप स्कीम की ज्यादा से ज्यादा तशहीर की जा सके। इधर जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के लिए बिला खलल बिजली सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए जारी इस्लाहात की जरूरत उजागर करते हुए बिजली महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एच राजेश प्रसाद ने स्मार्ट मीटरों की तंसीब का खैर मुकदम करने पर जोर दिया है। इन बातों का इजहार उन्होंने जम्मू डिवीजन में मंडल ब्लाक के सूरीचेक पंचायत में एक अवामी दरबार के दौरान किया। इस मौके पर अवाम की तरफ से कई मसाइल उठाए गए। 2019 के बाद पावर सेक्टर में अहम इस्लाहात पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि बिजली के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की गई है, जबकि खम्भों और तारों को बदलने के लिए 10,500 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ चैलेंजों के बावजूद यूपी हुकूमत सार्फीन को सब्सिडी पर बिजली फराहम करती है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर में बिजली के उस नुकसान को कम करने की जरूरत पर जोर दिया जो बिजली फीस की अदम अदायगी और बिजली चोरी की सूरत में होता है। उन्होंने कहा कि 22 लाख सार्फीन को स्मार्ट मीटर मिलने वाले हैं, जिनमें से पहले ही 6 लाख मीटर नसब किए गए हैं। श्रीनगर में जिला सतह की बैंकर्स रिव्यू कमेटी और जिला मशावरती कमेटी की एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें मार्च 2024 को खत्म हुई सेमाही के लिए मुख्तलिफ हुकूमती इकदामात और स्पॉन्सरशुदा स्कीमों के तहत बैंक और दीगर मालियाती इदारों की कारगुजारी का जायजा लिया गया। यह मीटिंग डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉ बिलाल मुहिद्दीन भट्ट की सदारत में डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में मुनक्कद हुई, जिन्हें इन मालियाती इदारों की तरफ से इस गोशवारे के दौरान दिए गए कर्जजात के बारे में तफसीली जानकारी दी गई। इस मौके पर डीसी ने जिले में काम करने वाले तमाम मुंसलिक महकमों और बैंकों पर जोर दिया कि वो क्रेडिट की सहूलियात को मजीद बेहतर बनाएं और वक्त रहते मुकर्रर अहदाफ को हासिल करने के लिए इजाफी जोश और जज्बे के साथ मरबूत अंदाज में काम करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस की नव तश्कील शुदा मैनिफेस्टो कमेटी का पहला इजलास आज श्रीनगर के पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक्कद हुआ। कमेटी के चेयरमैन अब्दुर्रहीम राठर की सदारत में मुनक्कदा इस इजलास के दौरान कमेटी के अरकान ने जम्मू कश्मीर में मुस्तकबिल के चैलेंजों, अवामी उमंगों और लोगों को दरपेश मसाइल व मुश्किलात पर तफसीली तबादले ख्याल किया। इस मौके पर फैसला लिया गया कि मंशूर के बारे में पार्टी की तमाम इकाइयों के अलावा तिजारती अंजुमनों, नीज, सिविल सोसाइटी की राय हासिल की जाएगी। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉ फारूक अब्दुल्ला ने आज ईदगाह जाकर वहां फिरदोस कॉलोनी में आग की भयानक वारदात से हुए नुकसान का जायजा लेने के अलावा आग मुतासरीन के साथ यकजहती जाहिर की। उन्होंने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि उनकी बाजाबादकारी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। एक अहम पेशरफ्त के तहत तालीमी साल 2024-25 से तीसरी और छठी जमात के लिए नई और दिलकश दर्सी किताबें मुतारिफ कराई जाएंगी। वजारती तालीम ने कहा है कि दर्सी किताबों की इशात का काम आखिरी मरहले में है और सयम जमात और छठी जमात के लिए 9 निसाबी किताबें पहले ही दस्तियाब हैं, जबकि बाकी मादा 8 किताबें बहुत जल्द मुहैया कराई जाएंगी। इस हवाले से मरकजी वजीर तालीम धर्मेन्द्र प्रधान ने नई दिल्ली में स्कूली तालीम और खानगी के सेक्रेटरी, एनसीईआरटी के डायरेक्टर और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरपर्सन के साथ तफसीली तबादले ख्याल किया। वजारत ने कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 का मकसद निसाबी तालीम को बेहतर, खुशगवार और दबाव से पाक बनाना है। एनसीईआरटी पहली से 12वीं जमात के लिए नई निसाबी किताबें तैयार कर रहा है ताकि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 और स्कूली तालीम के लिए कौमी निसाब के फ्रेमवर्क की दफात को मुकम्मल तौर पर वजह किया जा सके। खलीफाए दौम हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की यौम शहादत की मुनासिबत से वादी में आज नमाज जुमा के मौके पर खसूसी तकरीबात का इनेकाद हुआ, जिस दौरान मसाजिद, खानकाहों और जियारतगाहों में उलमाए किराम ने खलीफाए दौम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की इस्लामी फतूहात, उनके अदल व इंसाफ और सीरत पाक के बाज़ गोशों पर मुफस्सल रोशनी डाली। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हजरत बल में मुनक्कद हुई, जहां फरजंदान तौहीद की एक बड़ी तादाद आहजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुकद्दस की दीदार से फैजयाब हुई। आसार शरीफ शहरी कलाशपुरा में भी एक ऐसी ही तकरीब मुनक्कद हुई, जहां मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने हाजिरी देकर रूह परवर मजलिस में हिस्सा लिया। इधर सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी के साथ जारी है। यात्रा की इब्तिदा से आज शाम तक 1.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन किए। हमारे नुमाइंदों के मुताबिक आज दिन में भी दोनों रिवायती रास्तों यानी पहलगाम और बालतल से करीब 25,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी। इस बीच भगवती नगर जम्मू के बुनियादी कैंप से आज यात्रियों का एक और काफिला वादी पहुंच गया है, जो अमरनाथ गुफा के लिए आगे का सफर कल जारी रखेगा। दरी असना महकमा डाक की तरफ से यात्रियों की सहूलत के लिए पोस्टल खिदमात में इजाफा किया गया है। महकमे ने निमन बेस कैंप में पोस्ट ऑफिस खोलने का ऐलान किया है। महकमे की तरफ से जारी की जा रही इस सहूलत से यात्रा के दोनों बुनियादी कैंपों निमन, पहलगाम और बालतल सोनमर्ग में यात्री फायदा उठा सकते हैं। ये दोनों कैंप श्रीनगर पोस्टल डिवीजन के तहत आते हैं। निनवन कैंप में इस सहूलत का इफ्तिताह श्रीनगर डिवीजन के पोस्ट ऑफिस के सीनियर सुपरिंटेंडेंट जावेद अहमद हाजी ने किया। इस मौके पर उन्होंने बुनियादी कैंपों में मौसमी डाकखाने खोलकर हर साल यात्रियों की मदद करने के लिए महकमे डाक के अजम का इआदा किया। ये खबरें आकाशवाणी श्रीनगर से नशर की जा रही हैं। محکمہ لائبریریز جموں کشمیر میں پبلک لائبریری کی سہولیات تک رسائی بڑھانے کے لیے ایک جامع ایکشن پلان شروع کر رہا ہے تاکہ عوام خاص طور پر دور دراز علاقوں میں رہائش پذیر لوگ علم کے معیاری ذرائع تک رسائی حاصل کر سکیں۔ ان باتوں کا اظہار محکمہ ثقافت کے پرنسپل سیکرٹری سریش کمار گپتا نے سگام کپواڑا میں تجدید شدہ بارڈر بلاک لائبریری کا افتتاح کرنے کے بعد کیا۔ انہوں نے پبلک لائبریریوں میں بنیادی ڈھانچے کی بہترین سہولیات کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کرنے پر محکمہ لائبریری و تحقیق اور ضلع انتظامیہ کی تعریف کی۔ ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے آج ہارون سری نگر میں قائم سیڈ ملٹیپلیکیشن فارم کا دورہ کیا۔ فارم کے مختلف بلاکس کا معائنہ کرنے کے دوران انہوں نے مختلف زرعی سرگرمیوں کے علاوہ بیج کے مقصد کے لیے کاشت کی جانے والی مختلف زرعی فصلوں کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ عملے اور تکنیکی ماہرین سے بات کرتے ہوئے انہوں نے مختلف سبزی فصلوں کی کامیاب پیداوار پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ محکمے کے یہ فارم ماڈل زرعی مراکز میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ محکمے نے اختراعی اقدامات متعارف کرائے ہیں جبکہ محکمہ بیج کی پیداوار میں خود انحصاری حاصل کرنے اور کشمیر ڈویژن کے لیے بیج کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان فارموں کی افادیت کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ شوپیان ضلع میں آج دوپہر بعد ہوئی شدید ژالہ باری کی وجہ سے میوہ باغات اور دیگر کھڑی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ تفصیلات کے مطابق علاقے کے ہیرپورہ اور اس کے منہکجات میں قہر انگیز ژالہ باری کے نتیجے میں سیب ناشپاتی اور آلو کی کاشت سمیت دیگر فصلوں کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ ہمارے نمائندے جانثار احمد نے چیف ہارٹیکلچر آفیسر کا حوالہ دیتے ہوئے خبر دی ہے کہ محکمے کی طرف سے نقصان کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور فی الحال متاثرہ کاشتکاروں کو تکنیکی جانکاری فراہم کی جا رہی ہے۔ برطانیہ میں لیبر پارٹی نے پارلیمانی انتخاب میں برسر اقتدار کنزرویٹو پارٹی کو شکست دیتے ہوئے شاندار جیت درج کی ہے۔ لیبر پارٹی نے ایوان زیری میں پوری اکثریت حاصل کرنے کے لئے درکار 326 سیٹوں سے بھی زیادہ نشستیں حاصل کر لی ہیں۔ پارلیمانی انتخاب میں اتنی بڑی اکثریت حاصل کرنے کے بعد لیبر پارٹی کے کائر سٹارمر اب برطانیہ کے نئے وزیر اعظم بننے والے ہیں۔ اس طرح کنزرویٹو پارٹی کا 14 سال سے جاری سرکار کا دور ختم ہو گیا۔ موجودہ وزیر اعظم ریشی سونک نے عام انتخابات میں اپنی پارٹی کی ہار تسلیم کرنے کے بعد اپنے عہدے سے استعفی دے دیا ہے۔ چار کواڈ ممالک بھارت، آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ کے سینئر افسروں کی ایک میٹنگ 3 جولائی کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منعقد کی گئی، جس میں مئی 2023 کی کواڈ رہنما سربراہ کانفرنس میں لیے گئے عزائم کے حصول میں مختلف کواڈ ورکنگ گروپوں کی جانب سے کی گئی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ حکام نے بھارت بحر الکاہل خطے میں عوامی اشیاء کی منتقلی میں کواڈ ممالک کے تعاون کو مزید بڑھانے کے لیے نئے طور طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا، جن میں حفظان صحت کا تحفظ، ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچہ، انسانیت کی بنیاد پر امداد، قدرتی آفات میں راحت اور بچاؤ اور آب و ہوا میں تبدیلی سے متعلق مسائل سے نمٹنا، بحری امور سے متعلق بیداری میں اضافہ، دہشت گردی سے نمٹنا اور زیر سمندر کیبل رابطے کے ذریعے ٹیلی مواصلاتی نظام کو بہتر بنانا شامل ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے پیرس اولمپک کے لیے روانہ ہونے والے بھارتی کھلاڑیوں کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ ایتھلیٹس کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے مودی نے اعتماد ظاہر کیا کہ یہ کھلاڑی بھارت کے لیے فخر کا سبب بنیں گے۔ آخر میں موسم سے متعلق خبر۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش جبکہ بعض مقامات پر شدید بارش ہونے کا امکان جتایا گیا ہے۔ حالانکہ آج دن بھر بھی کشمیر وادی میں لوگ بارش کی منتظر رہے، لیکن پیشگوئی کے عین برعکس موسم آج بھی گرم رہا۔ البتہ شام ہوتے ہوتے مطلع جزوی طور پر ابر آلود ہوا اور کہیں کہیں پر ہلکی بوندا باندی بھی شروع ہو گئی۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.2 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.3 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 27.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بھارت میں سال رفتہ کے دوران دفاعی ساز و سامان کی قدر میں اب تک کا سب سے زیادہ اضافہ درج۔ ملک کو دفاعی ساز و سامان تیار کرنے کے عالمی مرکز کے طور پر فروغ دینے کے لئے حکومت پرعزم۔ جموں کشمیر میں بجلی کے بنیادی ڈھانچے کو بڑھانے کے لئے 10,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری۔ پی ایم سوری گھر बिजली योजना के तहत अगले तीन बरस में 36,400 सोलर रूफटॉप नसब करने का निशाना। मुल्की सतह पर तालीमी साल 24-25 के दौरान तीसरी और छठी जमात के लिए नई और दिलकश दर्सी किताबें मुतारिफ कराने का तालीम की मरकजी वजारत का ऐलान। और बरतानिया के आम चुनाव में लेबर पार्टी की शानदार फतह, मौजूदा वजीर आजम ओहदे से मुस्तफी। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।